हेलो दोस्तों, आज है 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि आश्विन कृष्ण पक्ष दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर आज बातचीत होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के कुछ महीने बाद से ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चर्चाएं शुरू कर दी गई थी। बावजूद इसके दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन अब एक बार फिर से दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर उम्मीद जगी है। सोमवार रात को डोनाल्ड ट्रंप का एक विशेष दूत दिल्ली पहुंच चुका है और मंगलवार को राजधानी में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता होनी है। और अगर ये डील पूरी हो जाती है तो भारत पर लगने वाला 50% टैरिफ भी खत्म हो सकता है। टैरिफ तनाव के बीच भारत आया अमेरिकी शिष्टमंडल, आज द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता होगी। अब देखते हैं क्या कुछ अपडेट्स आते हैं, वो अलग से हम जानेंगे। इसके अलावा आप देखिए, संप्रभुता से समझौता नहीं, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने भी ट्रंप के टैरिफ का विरोध किया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने रविवार को अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने का विरोध किया और ये तर्क दिया कि ये राजनीतिक और अतार्किक है। लूला ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी ऐसी बात पर बातचीत के लिए तैयार है जिससे आपसी लाभ हो सके, और उन्होंने ये भी कहा कि ब्राजील अपने लोकतंत्र और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। इधर आप देखिए, ऑनलाइन टिकट बुक करने के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 अक्टूबर से नए नियम लागू होने वाले हैं। ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर 2025 से किसी भी ट्रेन के लिए ऑनलाइन बुकिंग खुलने के बाद शुरुआती 15 मिनट के दौरान सिर्फ और सिर्फ आधार प्रमाणित यूजर्स को ही IRCTC वेबसाइट और ऐप के माध्यम से जनरल आरक्षण बुक करने की अनुमति होगी, सामान्य आरक्षण बुक करने की अनुमति होगी। हालांकि मौजूदा वक्त में भारतीय रेलवे के जो भी PRS काउंटर के जरिए टिकट लेते हैं, सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं होगा। सामान्य आरक्षण खुलने के 10 मिनट के प्रतिबंध के समय में भी कोई बदलाव नहीं होगा। यानी ऑनलाइन जो टिकट बुक करते हैं उनके लिए अपडेट है, अगर आधार वेरिफाइड अकाउंट नहीं है तो फिर आप 15 मिनट के बाद ही टिकट बुक कर पाएंगे और तब तक दूसरे टिकट बुक कर लेंगे तो फिर आपका नंबर, तो इसीलिए आपको आधार वेरिफाइड तो करवाना ही पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन टिकट वगैरह बुक कर रहे हैं तो, है ना। और आगे बढ़ते हैं, देखिए आप, पीएम मोदी ने कोलकाता में आयोजित संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन में रक्षा तैयारियों की समीक्षा की और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने नए हालात और भविष्य की जंग में उभरती तकनीकों और बदलते युद्ध तरीकों के बारे में भी जानकारियां दी गई। इधर नेपाल से बड़ी खबर आ रही है, नेपाल की नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण के बाद अंतरिम सरकार की कैबिनेट भी बन गई है। कैबिनेट बनते ही पहला फैसला लिया गया कि 17 सितंबर को देश में राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। कैबिनेट ने JNG प्रदर्शन के दौरान मारे गए युवाओं के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 17 सितंबर को नेपाल में राष्ट्रीय शोक के दौरान देश भर में आधा झंडा झुकाया जाएगा। इसके अलावा कार्की कैबिनेट ने वहाँ एक और फैसला लिया जिसके तहत नेपाल के शहीद परिवार को 15-15 लाख रुपए मुआवजा भी दिया जाएगा। पहले 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा हुई थी, उसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया गया। बेहतर लोगों ने अब तक जाने गवाई हैं। वहीं JNZ प्रदर्शनकारियों ने नेपाली प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का इस्तीफा भी मांग लिया है। कहा कि हमने कुर्सी पर बैठाया और हटाने में वक्त नहीं लगेगा, बिना सलाह के मंत्री चुनने का आरोप लगा है। कैबिनेट विस्तार को लेकर JNZ प्रदर्शनकारी अभी नाराज हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरिम सरकार प्रदर्शनकारियों की राय लिए बिना मंत्रियों को चुन रही है और अगर हम फिर से सड़क पर उतर गए तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा, जिस कुर्सी पर बैठाया है वहीं से निकाल फेंकेंगे। कुल मिलाकर 3 दिन में आप देखिए नेपाल में पूरी सियासत पलट गई है और अब सुशीला कार्की के खिलाफ ही JNZ उतर आए हैं। JNZ के लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनते ही कार्की का रुख बदल गया है। कार्की कैबिनेट विस्तार में उन लोगों को तवज्जो दे रही है जिनका आंदोलन से कोई लेना देना ही नहीं था। तो फिलहाल ऐसे अपडेट भी चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं, 3 बदलावों पर स्टे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सोमवार को कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया है। इनमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा ना हो। सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही हो। फैसले के महत्वपूर्ण पॉइंट भी आप यहां पर देख सकते हैं। इधर आप देखिए, वक्फ कानून के रद्द होने तक जारी रहेगी लड़ाई। मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इसके साथ ही मदनी ने कहा कि जमीयत इस काले कानून के रद्द होने तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि नया वक्फ कानून देश के संविधान पर सीधा हमला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर थाने में CCTV होना जरूरी है। रिकॉर्डिंग जांचने के लिए कंट्रोल रूम भी बने जिसमें इंसानी दखल कम हो। फैसला 26 सितंबर को आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुलिस थानों में CCTV कैमरों की कमी से जुड़े मामले में भी सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि थानों में CCTV नहीं होने से निगरानी में मुश्किलें हो रही हैं। कोर्ट ने राजस्थान से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट पर एक्शन लेते हुए सुनवाई की। फिलहाल अब इस मामले में फैसला 26 सितंबर को आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, अब बंगाल में SIR 2002 की वोटर लिस्ट से होगी तुलना। बिहार में एनटीआर की जांच अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। और इसी कड़ी में मंगलवार से ही राज्य भर में पोल अधिकारियों की ट्रेनिंग भी शुरू होने जा रही है। ये ट्रेनिंग स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR कार्यक्रम का हिस्सा है। इसके अलावा आप देखिए, इसराइल के खिलाफ कतर में 50 मुस्लिम देश जुटे। ईरान बोला कि इस्लामी देश इसराइल से रिश्ता तोड़े। कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों के 50 नेता इसराइल के खिलाफ एक खास बैठक के लिए इकट्ठा हुए। ये बैठक अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन OIC ने बुलाई और इसका मकसद 9 सितंबर को कतर पर हुए इजरायली हमले का जवाब देना है। साथ ही अगली बड़ी खबर आप देखिए, PM नरेंद्र मोदी ने सोमवार यानी 15 सितंबर को बिहार के लिए 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए। पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। एयरपोर्ट के बाद पूर्णिया के SSB ग्राउंड में PM मोदी ने सभा को संबोधित किया। PM मोदी ने SIR पर विपक्ष को घेरा है, जंगल राज की याद भी दिलाई, परिवारवाद पर भी निशाना साधा। साथ ही PM मोदी ने कहा कि इस साल दिवाली और छठ से पहले हमारी सरकार में बड़ा उपहार दिया है। ठीक 7 दिन बाद नवरात्र के पहले दिन 22 सितंबर से देश में GST एकदम कम हो जाएगी और आपकी रोजमर्रा के जरूरत की चीजों पर GST कम हो गई है। साथ ही आप देखिए, पंजाब में राहुल गांधी की SP से बहस, पाक बॉर्डर के पास जाने से रोका। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। पंजाब के गुरदासपुर में सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुलिस अधिकारियों से बहस हो गई। राहुल गांधी गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए गए थे और जैसे ही वे पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गांव की ओर बढ़ने लगे तो SP जुगराज सिंह ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया। SP ने राहुल गांधी को बताया कि आगे पाकिस्तान का बॉर्डर है और फेसिंग टूटी हुई है। इस पर राहुल गांधी ने SP से कहा कि आप इंडियन टेरिटरी में मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, गड़बड़ी मिली तो SIR रद्द करेंगे और बिहार पर जो भी फैसला देंगे वही पूरे देश पर लागू होगा। 7 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार में SIR के खिलाफ भी दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई और इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है, नियमों की अनदेखी कर रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम ये मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है, अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम इसको देखेंगे और अगर बिहार में SIR के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई भी अवैधता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में SIR पर लागू होगा। अब फिलहाल इस मामले पर 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। इधर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी के वनतारा को क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जामनगर स्थित वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में जानवरों की खरीद बिक्री नियमों के दायरे में हुई है। दरअसल इस सेंटर को अंबानी परिवार का रिलायंस फाउंडेशन चलाता है। कोर्ट ने कहा कि विशेष जांच दल यानी SIT की रिपोर्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले को बार बार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, स्वतंत्र समिति ने जांच की है और उसी पर हम भरोसा करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, UPI से अब रोज 10 लाख रुपए तक खरीदारी कर सकेंगे, 6 लाख की ज्वेलरी भी खरीद पाएंगे। UPI यूजर्स 15 सितंबर से एक दिन में 10 लाख रुपए तक पेमेंट कर सकेंगे, ऐसे अपडेट मिल गए। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M पेमेंट की कई कैटेगरी में डेली लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिए। जब कोई व्यक्ति किसी दुकान, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी व्यापारी को पेमेंट करता है तो उसे पर्सन टू मर्चेंट या P2M पेमेंट कहा जाता है। सरकार के इस फैसले से बीमा, निवेश और क्रेडिट कार्ड पेमेंट के बड़े बड़े लेन देन भी UPI के जरिए किए जा सकेंगे, यानी सभी तरह के UPI पेमेंट की लिमिट नहीं बढ़ी है। ये बदलाव केवल कुछ खास कैटेगरी में जैसे पर्सन टू मर्चेंट यानी कोई व्यक्ति है वो अगर किसी व्यापारी को लेन देन के लिए करता है पेमेंट करता है, यानी जैसे कोई व्यक्ति किसी दुकान, सर्विस प्रोवाइडर या किसी व्यापारी को पेमेंट करता है तो उसे पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M पेमेंट कहा जाता है। बाकी जो पर्सन टू पर्सन लेन देन की जो लिमिट है वो पहले की तरह 1 लाख रुपए रहेगी। तो मेन दोस्तों अंतर क्या हुआ P2P और P2M में, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सीधे ही पैसे भेजता है तो इसकी मौजूदा लिमिट 1 लाख रुपए है तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन P2M यानी व्यक्ति अगर किसी व्यापारी को भुगतान करता है जिसकी लिमिट अब 10 लाख रुपए हो गई है। अब ये कौन कौन सी कैटेगरी में लिमिट बढ़ गई है तो आप देखिए, अगर आप इंश्योरेंस में निवेश करते हैं, कैपिटल मार्केट में निवेश करते हैं, ट्रेवल से जुड़ा कोई आप पेमेंट करते हैं या ज्वेलरी खरीदते हैं तो इस तरह की जो लिमिट, पुरानी लिमिट जैसे आपको दिखाई गई है, नई लिमिट भी आपके यहाँ सामने दिखाई गई है। तो ये NPCI ने बदलाव किया है और इस फैसले से उन ग्राहकों को विशेष सीधा फायदा मिलेगा जिन्हें अब तक बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड या क्रेडिट कार्ड के बिल जैसे बड़े पेमेंट करने में दिक्कतें आती थी, तो अब वे लोग भी इन पेमेंट को UPI के जरिए अब आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा आप देखिए, मुंबई में भारी बारिश का दौर जारी है, रेलवे ट्रैक तक डूब गए, हैदराबाद में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मुंबई में सोमवार सुबह से लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक जाम हो गया। हैदराबाद में भी तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को तय समय से 3 दिन पहले ही पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, नागौर, जोधपुर और बीकानेर से मानसून विदा ले चुका है और अगले 2-3 दिन में पंजाब और गुजरात के भी कई इलाकों से मानसून लौटना शुरू हो जाएगा। जाएगा। मध्य प्रदेश में मानसून अभी एक दो हफ्ते और रहेगा। देश के अधिकांश हिस्सों से 15 अक्टूबर तक मानसून पूरी तरह लौट जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए। अगस्त में बेरोजगारी दर घटकर 5.1% पर आई है, लगातार दूसरे महीने गिरावट रही। साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ा दी गई है। 16 सितंबर यानी आज का दिन एक दिन का और मौका दिया गया है। अब तक 7 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल हो चुके हैं। पहले अंतिम तिथि 15 सितंबर थी, उसे एक दिन आगे बढ़ाकर 16 सितंबर किया गया है। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, अलर्ट रहने वाली खबर है। बुखार, खांसी और गले में दर्द से परेशान है तो आपको H3N2 का संक्रमण हो सकता है। दिल्ली NCR में ऐसे मामले बढ़े हैं। अभी हाल ही के दिनों में हुई भारी बारिश और जल जमाव के कारण डेंगू मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के साथ ही अब H3N2 वायरस के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। H3N2 भी इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही एक हिस्सा है जो फ्लू का कारण बनता है, और ये वायरस भी आमतौर पर ठंड के मौसम में ज्यादा फैलता है। चलिए बड़ी खबर देखिए। बिजनेस की पिच पर उतरे सौरव गांगुली। एशिया कप के बीच में ही भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार खिलाड़ी और अपने समय में गर्मजोशी के साथ कप्तानी रखने वाले सौरव गांगुली अब बिजनेस की पिच पर बैटिंग करने के लिए उतर गए। उन्होंने एथनिक वियर मार्केट में कदम रखा है। एथनिक वियर बाजार में अपनी छाप छोड़ने के लिए मिंत्रा के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने अपना नया ब्रांड सौरग्य लॉन्च किया है। साथ ही आप देखिए, 2 करोड़ किताबों वाली ये लाइब्रेरी 75 साल के एक बुजुर्ग ने कर्नाटक के गांव में बनाई है और दूर दूर से यहां लोग आते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति ने 20 साल की उम्र में बस कंडक्टर की नौकरी करते हुए किताबें इकट्ठा करना शुरू किया था और आज उनकी लाइब्रेरी में करीब 2 करोड़ किताबें हैं। साथ ही आप देखिए, दिल्ली हरियाणा समेत पूरे NCR में गैंगस्टर्स के 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 380 पुलिसकर्मी ऑपरेशन में जुटे। इसके अलावा आपको बताएं, दिल्ली पुलिस ने सड़क हादसे के आरोपी BMW चालक महिला गगनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं, BMW कार की टक्कर से वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी की मौत हो गई थी और पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। सारा ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन हुआ है। करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है, लाखों जमाकर्ताओं को रुपए भी मिलने लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED सहारा इंडिया ग्रुप और सुब्रतो राय के परिवार के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। आरोप था कि सहारा ग्रुप ने निवेशकों से 1.74 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा ग्रुप ने अब तक 16,138 करोड़ सहारा SEBI रिफंड खाते में जमा किए हैं, और इसमें से 5,000 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जमाकर्ताओं को लौटाने के लिए कहा गया था। 28 फरवरी 2025 तक करीब 13 लाख जमाकर्ताओं को 2,314 करोड़ रुपए लौटाए जा चुके थे। 28 जुलाई 2025 तक ये रकम बढ़कर 5,000 करोड़ हो गई, और इस तरह से 27 लाख से ज्यादा जमाकर्ताओं को पैसा मिला है। और अभी हाल ही में भी सहारा को लेकर एक अपडेट आया था, हमने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था। सहारा इंडिया के लाखों निवेशकों को जल्द ही पैसा मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं का बकाया चुकाने के लिए SEBI के पास जमा धनराशि में से 5,000 करोड़ रुपए जारी करने का भी हाल ही में आदेश दिया है। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, सिम कार्ड को लेकर ये अपडेट आ रहा है। एक व्यक्ति अधिकतम 9 सिम कार्ड ही रख सकता है। दूर संचार मंत्रालय साइबर फ्रॉड रोकने के लिए प्रयास कर रहा है। आपको बताएं, बिहार में एक व्यक्ति के नाम पर 6,800 सिम कार्ड पाए गए थे जिन्हें बंद किया गया, और ये जानकारी भारतीय दूर संचार सेवा संघ के स्थापना दिवस पर दी गई। साइबर सुरक्षा को सख्त करने के लिए कानून में संशोधन भी किया जा रहा है। फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि एक व्यक्ति अधिकतम अपने नाम पर किसी भी कंपनी के 9 सिम कार्ड ही रख सकता है, और इससे ज्यादा सिम कार्ड रखना अवैध है। अभी भी कुछ लोगों ने 20-20 सिम कार्ड अपने नाम पर चालू करा रखे हैं, तो ये गलत है। चलिए बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि बहुओं का वैवाहिक घर में रहने का कानूनी अधिकार है, भले ही वे संपत्ति में भागीदार न हो। कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति में अधिकार नहीं है, लेकिन वैवाहिक घर में रहने का अधिकार मान्य है। बहुओं के अधिकार पर कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है। यानी संपत्ति में हिस्सेदारी का मुकदमा कायम नहीं रह सकता, लेकिन बहुओं ने अपने वैवाहिक घर में रहने का अधिकार और स्वयं को बेदखल करने से रोकने की मांग की थी, उसे कोर्ट ने मान लिया है। फिलहाल आप देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने UGC को भी कड़े निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा में भेदभाव रोकने के लिए कदम उठाने को कहा है। बिहार में छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटों में बढ़ोतरी हो गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने बिहार के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 430 एक्स्ट्रा सीटें स्वीकृत की हैं। वहीं आप देखिए, बिहार को लेकर भी एक बड़ी खबर है। बिहार में 9,817 विकास मित्रों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। वहीं बिहार से अब रोजाना 89 से अधिक विमान उड़ान भरेंगे। पटना एयरपोर्ट से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी शुरू होगी। बिहार में नीतीश सरकार ने जमीन मालिकों को भी बड़ी राहत दी है। राजस्व महाअभियान की लास्ट डेट बढ़ाई गई है। साथ ही आपको बताएं, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत देश भर में महिलाओं, किशोरियों और बच्चों को लाभ मिलेगा। देश में महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को मजबूती देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के साथ साथ 8वें पोषण माह का शुभारंभ भी करेंगे, और ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संचालित होगा। CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी है। बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण नोटिस भी जारी कर और जानकारी दी है। दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों के लिए भी खुशखबरी है। सरकार ने पेंशन को लेकर अपडेट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पर 50,000 नई पेंशन शुरू होगी, जिसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। दिल्ली सरकार बुजुर्गों के लिए नई पेंशन योजना शुरू करने जा रही है, यानी नई पेंशन के तहत 50,000 एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों को योजना से जोड़ा जाएगा। वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही है, रांची झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य में नियुक्तियों के लिए विज्ञापन की तिथि के बाद बने जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। पीठ ने 44 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि सरकार और आयोग को विज्ञापन में ऐसी शर्त लगाने का अधिकार है, सही फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र होने पर ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे हिमालय रीजन पर आपदा का खतरा है, हिमाचल के पर्यावरण की जनहित याचिका का दायरा बढ़ाने के संकेत दिए। 23 सितंबर को फैसला आएगा। हिमाचल कैबिनेट ने 3700 पद बढ़ने को मंजूरी दी है। 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र आउटसोर्स पर रखे जाएंगे। राजस्व विभाग में 645 पटवारी भी भर्ती होंगे। 300 पद पंचायत सेक्रेटरी के बढ़ने को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने 20 महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए। अडानी की कंपनी को मिला केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट, मार्च में मिली थी 12.9 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट को मंजूरी, बनने में 6 साल लगेंगे। गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को सोनप्रयाग से केदारनाथ को जोड़ने वाले लगभग 13 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण का ठेका मिला है। कंपनी ने सोमवार को इस तरह की जानकारी दी। हरियाणा में 3 क्रिमिनल लॉ लागू होंगे, अमित शाह कुरुक्षेत्र से शुरुआत करेंगे। हरियाणा में 3 अक्टूबर से केंद्र सरकार के 3 नए क्रिमिनल लॉ पूरी तरह से लागू हो जाएंगे और इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र से करने वाले हैं। उनके दौरे से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 16 सितंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ प्रदेश में 3 नए कानूनों को लेकर अब तक हुई तैयारियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सरकार ने विधायकों को बड़ी राहत दी है। सरकार विधायकों को अब कार, मकान या फ्लैट बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन और प्रतिमा 10,000 रुपए विशेष यात्रा भत्ता देगी और इससे संबंधित दोनों नए संशोधनों को लागू कर दिया गया है। वहीं हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल शुरू हो गया है। 25 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 20 लाख महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की राशि मिलेगी। 1 लाख से कम वार्षिक आय वाली 23 से 60 साल की विवाहित और अविवाहित महिलाएं पात्र होंगी। साथ ही हरियाणा से एक और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों में वाहन चालकों की भर्ती के नियमों में बदलाव किया है। अब 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही 10वीं या 12वीं में हिंदी या संस्कृत का एक विषय भी होना चाहिए। स्नातक में हिंदी होने पर भी पात्रता रहेगी। ये नियम पदोन्नति और स्थानांतरण पर भी लागू होंगे। इसके अलावा हरियाणा में भी SIR की तैयारी हो रही है। 2002 के बाद मतदाता बने लोगों को सबूत देने होंगे, फर्जी वोटरों के नाम कटेंगे। इसके अलावा आप देखिए, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने फर्जी खेल प्रमाण पत्रों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाया है। खेल प्रमाण पत्र जारी करते समय जन्म तिथि और आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा से भी 5 दिन बाद मानसून की विदाई हो जाएगी, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। 20 सितंबर से मानसून की विदाई होने के अपडेट हैं। वहीं केंद्र सरकार ने इस साल नवंबर में गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर प्रस्तावित ननकाना साहिब पाकिस्तान तीर्थ यात्रा को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC को पत्र लिखकर साफ कहा कि मौजूदा हालात में यात्रा संभव नहीं है। गृह मंत्रालय ने पत्र में कहा कि भारत पाकिस्तान सीमा पर तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं और ऐसे में गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर श्रद्धालुओं की यात्रा के दौरान सुरक्षा खतरा बढ़ सकता है। हालांकि SGPC ने विरोध जताया और पुनर्विचार की मांग की गई है। इधर आप देखिए, हरियाणा के गूगल बॉय को आशीर्वाद देने के लिए बॉलीवुड एक्टर तक पहुंचे। गुजरात से इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भी पहुंची। 29 तारीख को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड जाएंगे कौटिल्य। हरियाणा में करनाल निवासी गूगल बॉय के नाम से पहचान बनाने वाले कौटिल्य पंडित अब इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे और वे वहां पर AI फॉर ह्यूमैनिटी, डार्क मैटर, प्लाज्मा फिजिक्स और ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर रिसर्च करेंगे। अक्टूबर से शुरू होने वाली इस पढ़ाई के लिए कौटिल्य 29 सितंबर को भारत से रवाना होंगे और इसी उपलब्धि से पहले करनाल के गरुंडा में उनके आशीर्वाद अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कई बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची। इधर आप देखिए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने UAPA के एक आरोपी को जमानत दी। कहा कि सिर्फ हथियार बरामदगी से आतंकी साबित नहीं होता, 5 साल में कोई पूछताछ नहीं। भोपाल इंदौर के बीच हाई स्पीड एक्सप्रेसवे रूट फाइनल हुआ है। इंदौर से भोपाल तक सड़क मार्ग से जाने में फिलहाल 3.5 घंटे से लेकर 4 घंटे तक का समय लगता है, लेकिन अब ये दूरी महज 1.5 से 2 घंटे की हो जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार दोनों शहरों के बीच हाई स्पीड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बनाने जा रही है। इसका रूट फाइनल हो चुका है और इस कॉरिडोर के बनने से दोनों शहरों के बीच की दूरी 45 से 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। ये दूरी 198 से घटकर करीब 148 किलोमीटर रह जाएगी और NHAI से भारतमाला हाईवे की तर्ज पर डेवलप करेगी। बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर घोपक्त प्रत्याशी उतारेंगे शंकराचार्य। सुपौल में शंकराचार्य ने कहा, देश में 90 करोड़ हिंदुओं की आवाज की जा रही अनसुनी। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार की राजनीति को लेकर यह बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर घोपक्त निर्दलीय प्रत्याशी उतारे जाएंगे। हरियाणा में जल्द ही मिलेंगे राज्य शिक्षक पुरस्कार। 2 साल से ऐलान नहीं हुआ। 1 लाख रुपए मिलेंगे 15 साल का का अनुभव जरूरी है। साथ ही बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, आप देखिए साल 2020 में राजस्थान की गहलोत सरकार ने सचिन पायलट पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने सरकार गिराने की साजिश रची थी और इसके लिए पहले SOG और बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB में मामला दर्ज कराया गया था। अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसे फर्जी मानते हुए कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। राजस्थान में RGHS अधिकृत दवा विक्रेताओं ने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर हम दवाइयां देना बंद कर देंगे। आरोप है कि सरकार के वादा करने के बावजूद भी महीनों से भुगतान अटका हुआ है, 880 करोड़ रुपए का पेमेंट अटका हुआ, ऐसे अपडेट मिल रहे हैं। साथ ही राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC सदस्य मंजू शर्मा का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद RPSC सदस्य मंजू शर्मा ने इस्तीफा दिया था, जिसे 15 दिन बाद राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है। राजस्थान में मकान जमीन की लीज राशि पर छूट मिल रही है, ब्याज 100% माफ होगा, मूल में भी रियायत मिलेगी। राजस्थान में सरकार ने शहरी सेवा शिविर शुरू किया है और इससे आम जन को छूट और रियायतें दी जा रही हैं। इसमें जमीन और मकान की बकाया लीज राशि जमा करवाने पर ब्याज और मूल राशि में छूट दी जाएगी। साथ ही आप देखिए राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राजस्थान सरकार ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया, 222 RS अफसरों के ट्रांसफर किए गए। चलिए बड़ी खबर देखिए, बाड़मेर से सीकर के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए भी एक काम की खबर है। रेलवे बाड़मेर से जम्मू के बीच बाड़मेर जम्मू तवी एक तरफा स्पेशल ट्रेन का संचालन करने जा रहा है। ये ट्रेन सीकर के रिंगस स्टेशन पर भी ठहराव करेगी। 17 सितंबर को ये ट्रेन बाड़मेर से दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी। साथ ही राजस्थान में कृषि विभाग भर्ती परीक्षा की तारीख में बदलाव हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि विभाग भर्ती परीक्षा 2024 के लिए 5 सितंबर को जारी किए गए विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। संशोधन के बाद 18 तथा 19 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाओं का आयोजन अब 28 एवं 29 अक्टूबर को किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में फिर से तबादले हुए 20 IAS इधर से उधर हुए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में आप देखिए भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों की समस्या और प्रदेश सरकार के लैंड को लेकर सोमवार को पूरे प्रदेश में आंदोलन किया गया। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर किसान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहे थे। अपनी मांगों को लेकर किसान भाई सड़कों पर उतरा है। इंदौर में एक बेकाबू ट्रक ने कहर मचा दिया, कई मासूम जिंदगियां कुचल दी गई, परिजन मातम में डूब गए। इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर सोमवार शाम को एक बेकाबू ट्रक ने बड़ा कोहराम मचाया। करीब 1 किलोमीटर तक लोगों को घसीटते हुए ट्रक ने कई जिंदगियां छीन ली। हादसे में 3 लोगों की मौतें हुई हैं, जबकि 5 से 7 की जान जाने की आशंका है। अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं आप देखिए मध्य प्रदेश में बनेगा इंजीनियर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। CM ने कहा कि ऐसा इंस्टीट्यूट बनेगा जिसमें दूसरे प्रदेशों से भी ट्रेनिंग लेने के लिए इंजीनियर आएंगे। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, NHM संविदा कर्मचारियों के हड़ताल को 26 दिन से अधिक होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने 10 में से एक भी मांग लिखित में पूरी नहीं की है। हालांकि 5 मांगे पूरी करने पर मौखिक सहमति बन चुकी है, लेकिन कर्मचारी इससे खुश नहीं है। अब सरकार ने 16 सितंबर तक का फाइनल अल्टीमेटम संविदा कर्मचारियों को दिया है। सरकार का कहना है कि अगर कर्मचारी वापस नहीं लौटते हैं तो 16,000 सीटें शून्य मान ली जाएगी और इन सीटों पर नई भर्तियां होगी। हालांकि सख्ती का असर संविदा कर्मचारियों पर नहीं दिख रहा है। वहीं देखिए आप लखनऊ में पंचायती राज विभाग और IIM के बीच MOU, पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण मिलेगा, 5 दिन का सेशन होगा। लखनऊ में LDA में बदलेगी वर्षों पुरानी व्यवस्था, अब रजिस्ट्री में विवाहित पुरुषों को नहीं जोड़ना होगा पत्नी का नाम, बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं लखनऊ में 16 और 17 सितंबर को कौशल महोत्सव का आयोजन भी होगा। 100 से ज्यादा कंपनियां नौकरियों और अप्रेंटिसशिप के अवसर देंगी। इधर देश भर में 20 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट, TET अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET अनिवार्य किए जाने के विरोध में सोमवार को देश भर के 780 जिलों में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। बिहार में ट्रांसजेंडर समुदाय का सरकार को नोटिस, किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य ने भेदभाव का आरोप लगाया, 7 दिन में जवाब मांगा गया। इधर आप देखिए पाकुड़ में, झारखंड पाकुड़ से ये खबर आ रही है, एक बाइक की सीट के नीचे सांप मिला। ड्यूटी पर जाते वक्त महिला को करेत सांप दिखाई दिया। करेत सांप तो आपको पता ही होगा, ये भारत का चौथा सबसे जहरीला सांप है और बरसात के मौसम में सांपों का दिखना तो बहुत ही आम बात है, सावधान रहना चाहिए। कभी कभी ये गाड़ियों में स्कूटी के अंदर भी घुस जाते हैं। इधर आप देखिए मिसेज इंडिया एशिया 2025 भोपाल की डॉक्टर श्वेता मिश्रा फर्स्ट रनर अप बनी है, एलिगेंट कैटेगरी का ताज जीत लिया। साथ ही देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, कार्डी गार्ड के ग्राम प्रधान राकेश जावड़ी के मुताबिक सहस्त्र धारा क्षेत्र में सोमवार देर रात बादल फटने से बड़े पैमाने पर नुकसान होने की सूचना है। 2 से 3 बड़े होटल क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि एक मार्केट में बनी करीब 7 से 8 दुकानें ध्वस्त हो गई, बादल फटने की घटना हो गई है। केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई सुविधा शुरू की हुई है। अब जो कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS के सदस्य हैं, उनके पास एक बार राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम यानी NPS में बदलने का विकल्प होगा। ये बदलाव सितंबर 2025 से लागू होगा। सरकार ने 15 सितंबर 2025 को जारी एक प्रेस रिलीज में बताया कि UPS के सदस्य कर्मचारी अब सिर्फ एक बार ही NPS में बदलाव कर सकते हैं। एक बार स्विच करने के बाद वापस UPS में जाना संभव नहीं होगा। स्विच के लिए कर्मचारी को या तो सेवानिवृत्ति से कम एक साल पहले आवेदन करना होगा या फिर वॉलेंट्री रिटायरमेंट यानी वीआरएस से 3 महीने पहले। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में 7,500 पदों पर भर्तियां शुरू हो गई हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 866 पदों पर भी भर्ती का मौका चल रहा है। ओप्पो की नई स्मार्टफोन सीरीज F31 लॉन्च हो गई है और इसमें कई मॉडल नए आ गए। ओप्पो F31, 31 प्रो और 31 प्रो प्लस मॉडल शामिल है। बैटरी भी 7,000 mAh की मिलेगी, 50 MP कैमरा, फास्ट चार्जिंग और IP69 रेटिंग भी है। शुरुआती कीमत 22,999 रूपए रखी गई है और इसे 27 सितंबर 2025 से ऑफलाइन रिटेलर से भी खरीद पाएंगे। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज मंगलवार के ग्रह नक्षत्र वरियान और स्थिर योग बना रहे हैं, जिससे मेष और कर्क राशि वालों को मेहनत का फायदा मिलेगा। सिंह राशि वालों को एक से ज्यादा सोर्स से इनकम हो सकती है। वृश्चिक राशि के लोगों को पब्लिक रिलेशन से फायदा मिल सकता है। धनु राशि वालों को करियर में नई संभावनाएं मिल सकती है। मकर राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे। कुंभ राशि वालों को प्रमोशन के मौके मिलेंगे और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का।
इस ऑडियो को पसंद करने के लिए और आगे भेजने के लिए 5 दबाएं। इसका ऑडियो आईडी नंबर आपको SMS कर दिया जाएगा।